छः, हमारी पर्णकुटी में पिताजी के लाए हुए अनेक प्रकार के और अनेक आकारों के धनुष थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने पहली पहली बार उनमें से एक धनुष देखा था और उसके प्रति मुझको जो आकर्षण लगा था वह अद्भुत था। उसकी कपूत सी ग्रीवा की तरह मुड़ी हुई कमान और नखमात्र से छीड़ देने पर ही टंकार करने वाली प्रत्यंचा मुझको बहुत अच्छी लगी थी। पिताजी के हाथ से मैंने वह लगभग छीन ही लिया था। हाथ में उसको नचाता हुआ उछलता कूदता मैं तुरंत ही आंगन में घोड़े की पूंछ से क्रीड़ा करते हुए शोर के पास आया। वह घोड़े की पूंछ के गुच्छे से चमकीले लंबे बाल निकालने में लगा हुआ था, कुछ गुनगुना भी रहा था। उसको वह धनुष दिखाते हुए मैं बोला, शोर यह देख अपना खिलौना, अब घोड़े के बाल उखाड़ना छोड़ दे, आज से हमारा नया खेल प्रारंभ होगा। उसने हाथ में लिए हुए बाल तत्काल फेंक दिए। देखूं देखूं कहता हुआ बड़ी उत्सुकता से नाचता हुआ वह मेरे पास आया। मेरे हाथ से धनुष अपने हाथ में लेकर आंखें बड़ी बड़ी कर वह बोला, यह तो बड़ा भारी है रे। चल हट, यह क्या भारी है, ला मुझे दे और भीतर से एक बाण ले आ। मैंने उसको बाण चलाने लाने के लिए भेज दिया। भैया के लिए बाण दो, भैया के लिए बाण, यह चिल्लाता हुआ वह भीतर भाग गया। मैंने अपने उत्तरीय से धनुष के दंड पर जमी हुई धूल धीरे धीरे पोछी। हाथ में उसको तौल कर देखा, इतने में शोण एक बाण लेकर उछलता कूदता बाहर आया। बाण मेरे हाथ में देकर सामने स्थित वटवृक्ष की ओर उंगली दिखाता हुआ बोला, भैया उस पेड़ में अब बाण मार दो। मैंने झटपट डोरी चढ़ाई और बाण चढ़ाकर सख्ती से उसको खींचा। एक स्थान पर हाथ स्थिर कर बाई आँख मींच कर डोरी छोड़ दी। बाज की तरह झपट की तरह वह बाण सरल रेखा में आगे गया और कच्चे से आगे खड़े वटवृक्ष में घुस गया। क्षण भर में ही जहाँ बाण घुसा था वहाँ से दूध जैसा रस निकलने लगा। शोण तालियां बजाकर उछलने कूदने लगा। मेरा वेद उसको पसंद आया था। उस दिन से मेरा और शोण का यह कैसे नियमित खेल ही बन गया। आकाश में चक्कर लगाने वाले शेन को बाण का अचूक निशाना बनाना, हवा के झोंकों के साथ फुनगी पर इधर उधर हिलने वाले आम के डंठल तोड़ना, एक ही साथ दो बाण छोड़कर दो भिन्न भिन्न लक्ष्यों का वेध करना आदि अनेक खेल हम घंटों खेला करते थे। इन सब खेलों के पंच थे हमारे पिताजी। वे जो कुछ कहते उसका पालन हम सिर झुकाकर कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में सदा एक ही विचार आता, मैं हर प्रकार से बाण चलाना सीखना चाहता था। लक्ष्य को न देखते हुए केवल आवाज की दिशा में बाण चलाना सीखना चाहता था। जिस प्रकार शाही नामक जंतु अपनी रक्षा के लिए अपने देह से 100-200 नलिकाएं एक साथ छोड़ सकता है, उसी तरह मैं भी असंख्य बाण एक साथ छोड़ना सीखना चाहता था। 7, स्वप्न का क्या अर्थ होता है, यह कोई भी ठीक ठीक बता सकता है क्या? मुझको तो वे अतृप्त मन की इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष की तरह लगते हैं, क्योंकि उस रात मेरे स्वप्न में अनेक धनुषों ने क्रीड़ा की थी। फूलों से सजे हुए घुमावदार आकार वाले परुष किंतु लचीली डंडी के बहुत से धनुषों को मैं एक एक कर हाथ में ले रहा था। जो भी वस्तु दिखाई पड़ जाती थी उसी पर मैं एक के बाद एक अचूक बाण फेंक रहा था। अपने लक्ष्य वेद पर स्वयं प्रसन्न होकर आनंद से तालियां बजाता हुआ कि मैं जाग पड़ा था। एक दिन प्रातःकाल मैं और शोण नगर के अरण्य में रथ में लगने वाले कीकर वृक्ष की कठिन और टिकाऊ लकड़ी लेने गए थे। शोण तो उस दिन बहुत ही आनंदित था। अरण्य में घूमने का अवसर मिलना उसकी दृष्टि में बड़े ही भाग्य की बात थी। वहाँ अनेक पक्षियों की भिन्न भिन्न प्रकार की मंजुल आवाजें, वृक्षों की डालों की आपस में रगड़ने से होने वाली करकर, झरनों की मधुर कलकल, भीमकाय वृक्षों का अवलंब लेकर ऊपर चढ़ने वाली लताओं की अविरत सरसर, इन सब बातों के प्रति उसका अद्भुत आकर्षण था। उनका वर्णन या बिना थके घंटों तक करता रहता, लेकिन मुझको अरण्य में जाना उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सूर्यदेव की झलक तक दिखाई नहीं होती और तब मेरा मन अकारण ही क्षुब्ध हो जाता, अकारण ही वहाँ घुटन से प्रतीत होने लगती। शीघ्रातिशीघ्र मैं वहाँ से बाहर निकलने का प्रयत्न करता। जब खुले पठार पर आ जाता तभी मेरा मन कुछ हल्कापन अनुभव करता। भगवान आदित्य के दर्शन कर लेने पर तो मेरी सारी भ्रांति न जाने कहाँ चली जाती। उस दिन कीकर की लकड़ी लेकर हम नियमानुसार लौट आए। अरण्य से शीघ्र बाहर निकलने के लिए मैं जल्दी जल्दी पैर रखने लगा। शोण मेरे पीछे पीछे बाहर आ ही रहा था। समीप ही एक खुले पठार पर पहुंचकर मैं रुक गया। शोण भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आ गया। कंधे पर रखे हुए लकड़ी को एक वृक्ष के तने के सहारे रखकर उसने मुंह पर का श्वेत पोछा। सामने इतस्तत सरकंडे उगे हुए थे। उन्हीं सरकंडों के कछार में गाय भैंसों का श्वेत श्याम रंग का एक झुंड चल रहा था। उसी में एक हृष्ट पुष्ट बारहसिंघा भी मिल गया था। अपने शानदार सिंह खड़े कर वह हमारी ओर देखने लगा। प्रश्न पूछने के लिए शोण को इतना कारण पर्याप्त था। उसने उसी क्षण मुझसे पूछा, भैया यह बारहसिंघा अकेला इस झुंड में कैसे आ गया रे? मैं भी भला उसको क्या उत्तर देता। कुछ न कुछ कहना है यह सोचकर मैं बोला, रास्ता भूल गया होगा वह, या फिर उसके झुंड के अन्य साथी उसको भूल गए होंगे। लेकिन इस सारे समूह में वह कितना आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ रहा है ना? लेकिन अपने साथियों को छोड़कर अकेला ही वह क्यों घूम रहा होगा? इसका कारण बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझको जल्दी नहीं मिल सका। उस बारहसिंघा की ओर देखते हुए हम आगे बढ़े। मुझको उस बारहसिंघा के शानदार सिंह बहुत ही अच्छे लगे थे। मैंने चलते चलते सहज ही कानों से हाथ लगाया, मांसल कुंडलों पर हाथ पड़ा। अपने इन कुंडलों के कारण क्या मैं भी उस प्रभावशाली बारहसिंघे सा दिखाई देता हूँगा? यह विचार मेरे मन में कौंध गया। वैसे कुंडलों के संबंध में मैंने कई बार माँ से खोद खोद कर पूछा था, परंतु उनके संबंध में कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। एक बार तो मैंने उससे साफ साफ पूछा था, शोण और मैं दोनों सगे भाई हैं ना, फिर उसके क्यों नहीं है कुंडल? वह भी दृष्टि से मेरे कुंडलों की ओर देखती हुई वह क्षण भर चुप रही, फिर सचेत होकर बोली, मुझसे मत पूछो यह, अपने पिताजी से पूछो। यह कहते समय उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। मैं उस समय पिताजी के पास गया। उनसे भी मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन उन्होंने बड़ा ही विचित्र उत्तर दिया। वे बोले, गंगा माता से पूछ इसका कारण, कभी दिया तो इस प्रश्न का उत्तर वही तुझको देंगी। मैं विचारमग्न हो गया, गंगा माता इसका उत्तर भला कैसे देंगे? क्या नदी कभी बोल सकेगी? ओह, ये बड़े लोग कैसा व्यवहार करते हैं, छोटों से वे इस तरह की बातें क्यों करते हैं? उस दिन सायं सबकी दृष्टि से बचकर मैं अकेला ही गंगा माता के तट पर जाकर बैठ गया। उसकी लहर लहर से मैंने प्रश्न पूछा, केवल मेरे ही कानों में कुंडल क्यों है? परंतु एक भी लहर मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। उस दिन मुझको संसार के सभी बड़े लोग कपटी लगे। छोटों को अज्ञान के अंधकार में रखने का काम ही वे करते हैं, नहीं तो फिर इतनी बड़ी गंगा माता चुप क्यों रही? दूसरे दिन सायं समय धनुष से खेलते हुए मैंने वही प्रश्न शोण से पूछा, शोण सच बता, तुझको कुंडल क्यों नहीं मिले? उसके उत्तर को सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बोला, मैं भी तो यह बात नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि तुम्हारे कुंडल मुझको बहुत ही अच्छे लगते हैं। रात को जब तुम सो जाते हो या तारों की तरह अविरत जगमगाते रहते हैं, उनका नीला स्वप्रकाश तुम्हारे लाल गालों पर बिखरा रहता है। मैं अवाक होकर उसकी ओर देखने लगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था, और मुझसे तो झूठ बोलने की संभावना बिल्कुल ही नहीं थी। मेरे मन में एकदम अनेक प्रश्न उमड़ आए जो अन्य किसी के पास नहीं थे। ऐसे तो मांसल कुंडल मेरे कानों में थे, इतना ही नहीं वे चमकते भी थे। मुझको ही ये क्यों मिले, मैं कौन हूँ? शोण के दोनों कंधों को झकझोरते हुए मैंने तड़प कर उससे पूछा, शोण मैं कौन हूँ? मेरे हिलते हुए कुंडलों की ओर चुपचाप जी भर कर देखता हुआ वह निश्चल भाव से बोला, मेरा बड़ा भाई वसु भैया। तत्क्षण मैंने उसके कंधे छोड़ दिए। उसके उत्तर से मेरा समाधान नहीं हुआ था। मैंने सामने देखा सूर्य नारायण अपने असंख्य लतिकाओं से गगनमंडल को नानाविध रंगों से रंगते हुए अदृश्य हो रहे थे, और मेरे मन में कुंडलों का कौतूहल घनीभूत हो रहा था। 8 उस रात प्रयत्न करने पर भी मुझको नींद नहीं आई। कौतूहल चंचल अश्व की तरह होता है, विचारों के बल का चाहे जितनी खींचो लेकिन वह दौड़ता ही जाता है। मैं रात भर करवटें ही बदलता रहा। एक ही प्रश्न रात भर बार बार मेरी आंखों के आगे नाचता रहा, यह कुंडल मेरे ही कानों में क्यों है? सुनते हैं कि रात में ये चमकते हैं, कैसे चमकते होंगे ये, क्यों चमकते हैं? मैं झपट कर उठकर बिस्तर पर बैठ गया। आंखों की पुतलियों को कान तक ले जाकर यह देखने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगा कि कुंडल सचमुच ही चमकते हैं क्या, लेकिन कान आंखों की कक्षा में किसी तरह आ ही नहीं रहे थे। मैं अधीर हो उठा। अपने मन अपने कान किस प्रकार दिखाई दे सकेंगे? बहुत देर तक यही सोचता रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार इच्छा हुई कि स्वर्ण को जगा दूं और उससे पूछूं कि मेरे कुंडल चमक रहे हैं क्या, देखो तो। लेकिन वह शांतिपूर्वक माँ की गोद में सो रहा था। यदि उसको जगाता तो माँ भी जग जाती। पिताजी तो हस्तिनापुर में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में ही मुझको पिताजी के शब्द याद आए, गंगा माता ही कभी तुझको तेरे प्रश्न का उत्तर देंगी। मैं धीरे से तल पर से उठा। अचक से मैंने पर्णकुटी का द्वार खोला और गंगा माता की ओर चल दिया। आकाश श्वेत शुभ्र जलमिल तारों से खचाखच भरा हुआ था। शोर ने कहा था, तेरे कुंडल तारों की तरह चमकते हैं, इसलिए बीच बीच में तारे कैसे चमकते हैं यह ध्यान से देखने लगा। लेकिन इससे मुझको संतोष ही नहीं होता था। मजीरे निरंतर किर किर कर रहे थे। सारा चंपानगर मंदिर के गर्भगृह की तरह निश्चल और शांत था। कभी कभी किसी की अश्वशाला के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ जाती थी। तारों के धुंधले और अस्पष्ट प्रकाश में सामने का मार्ग साफ दिखाई नहीं पड़ता था। मैं जल्दी जल्दी पैर रखता हुआ चलने लगा। ठंडी हवा के झोंके बार बार शरीर से टकरा रहे थे। उत्तरी ओढ़ना भी मैं भूल गया था। बहुत देर तक चलने के बाद मैं नदी के किनारे पर आया। दिन में उछलते हुए पानी का वह विशाल पात्र अब रात्रि में बहुत ही गंभीर और शांत लग रहा था। दिन में जो विशाल पात्र क्षितिज को छूता हुआ सा प्रतीत होता था, वही अब अंधकार के साम्राज्य में एकदम लीन सा हो गया था। केवल किनारे के पत्थरों पर और बालू पर टकराने वाली लहरों की अविरत छल छल ध्वनि मात्र सुनाई देने लगी। उस ध्वनि से वहां की शांति बहुत ही गंभीर बन गई थी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहा, कान लगाकर उस शांति की आहट लेने लगा। क्षण भर के लिए तो मैं यह बिल्कुल ही भूल गया कि मैं यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। विचारों की तंद्रा में उसी तरह गंगा माता के पात्र में उतर गया। आकाश के तारों का स्वच्छ प्रतिबिंब उस जल में पड़ रहा था। उनमें दो तारों का प्रतिबिंब तो सबसे अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद एकाध लहर आ जाती और वह प्रतिबिंब जोर से हिलता हुआ लंबा हो जाता। अंजलि में पानी लेने के लिए मैं नीचे झुका। वे दो तारे और अधिक चमकने लगे। मैं अपने मुंह को पानी के एकदम समीप ले गया। वे दो तारे मेरे कान के दोनों कुंडल ही थे। नीचे गंगा के पानी के दर्पण में वे मंद मंद चमक रहे थे। बीच बीच में लहरों के साथ लंबा आकार ग्रहण कर रहे थे। मैं अपनी मुखाकृति को पानी में एकटक देखने लगा। वे दोनों कुंडल नीले प्रकाश के दोनों ओर वलय फेंक रहे थे। वह मेरी मुखाकृति का अस्पष्ट रूप था। मेरे कुंडल रात में चमकते हैं, यह रहस्य गंगा माता ने मुझको बताया। लेकिन चमकने वाले ये कुंडल अकेले मुझको ही क्यों मिले? मैं कौन हूँ? कौन? मैं उसी स्थिति में पानी में खड़ा रहा। मेरे मन की एक शंका दूर हो गई थी, लेकिन दूसरी ज्यों की त्यों थी। ये चमकने वाले कुंडल मुझको ही क्यों मिले? 3-4 घंटों तक मैं पानी में उसी तरह खड़ा रहा। प्रातःकाल किसी ने किनारे पर स्थित मंदिर का घंटा बजाया और मुझे एकदम पर्णकुटी की याद आई। मुझे न देखकर माँ घबरा गई हो। जल्दी लौटने का विचार कर सामने देखा तो पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगा था। अंधकार के साम्राज्य में लीन गंगा माता का पात्र पुनः नीले आकाश के हाथ में हाथ दिए खड़ा था। वर्षा के पहली झड़ी के बाद धरती माता की गोद से धीरे से जैसे कोई अंकुर झांकने लगता है, वैसे ही दूर गंगा माता के गर्भ से सूर्यदेव ऊपर आ रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा। मेरा मन शांत हो गया था। अनजाने ही अंजलि में जल भर लिया। आंखें मूंद कर उस पानी का अर्घ धीरे धीरे मैंने सूर्यदेव को दिया और लौट आया। रात में अस्पष्ट दिखाई देने वाला मार्ग अप्रकाशित होता जा रहा था। रात में मंदिर के गर्भगृह से प्रतीत होने वाला चंपानगर अब मंदिर के शिखर पर फहराने वाले ध्वज की तरह चेतन प्रतीत होने लगा था। लौट कर पहुंचते ही माँ ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था? वह घबरा गई थी। गंगा के तट पर। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन गंगा माता ने यह दिखा दिया कि मेरे कान के कुंडल किस तरह चमकते। अत्यंत भयभीत दृष्टि से माँ ने मेरी ओर देखा। जब तक वह मेरी ओर ऐसे ही विचित्र दृष्टि से देखती रहती थी। वह मुझसे कुछ और भी पूछना चाहती थी, उसको टालने के लिए मैं तुरंत ही बाहर आ गया। 9 हमारी पर्णकुटी के सामने एक बड़ा वट वृक्ष था। वृक्ष क्या, अनेक रंगों के और अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले पक्षी जिस पर रहते थे, ऐसा छोटा सा एक पक्षी नगर ही था। गर्मियों में जब वृक्ष छोटे छोटे लाल रंग के फलों से लद जाता तब वह ऐसा लगता जैसे टिमटिमाने वाले असंख्य तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश ही हो। इस समय उस पर रहने वाले पक्षी बड़े ही आनंदित होते थे। भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलकर वे अपना आनंद शायद एक दूसरे को बताकर प्रकट करते थे। उनकी उस चहचहाहट को मैं अपने आप को भूलकर घंटों कान लगाकर सुनता रहता था। मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी इस वृक्ष जैसा ही बनूं, मुझ पर लगने वाले सभी फलों का ये पक्षी भोग करें। कभी किसी वृक्ष पर न बैठने वाला सर्वश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ भी मेरे पास आए। सर सर करते हुए जीवित सर्प के अतिरिक्त कुछ भी न खाने वाला वह पक्षीराज पहले बड़ी शान से मुझको कहे कि छी, ऐसे पिलपिले फल खाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। और मैं अपने हरे भरे पत्तों के हाथ जोड़कर नमस्कार कर उससे कहूँ, फल मत खाओ पक्षीराज, लेकिन विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुको। वह थोड़ी देर रुके और फिर सर से ऊंची उड़ान भरने से पहले जाते जाते मुझ पर लगे हुए एक फल को धीरे से तोड़ ले। पक्षीराज के इस पराजय पर आनंदित होकर मैं अपने पत्ते के असंख्य हाथों से तालियां बजाऊं, देह पर लिपटे हुए लताओं के उत्तरीय बनाकर आनंदातिरेक से उनको अंतरिक्ष में उड़ाऊं। मैं उस वृक्ष की ओर देख रहा था। उसका आकार गदा की तरह था, ऊपर शाखाओं का गोलाकार घेरा और नीचे सुदृढ़ तना। इतने में ही अजीब सी खाट आवाज हुई। मैंने उस ओर देखा। हमारे पड़ोस में रहने वाला भगदत्त नामक सारथी अपने हाथ में लगे हुए प्रतूत को फटकार रहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाथ में लगे प्रतूत को गर्दन के चारों ओर लपेटता हुआ वह बोला, क्यों वसु, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वह पक्षी देख रहा हूँ, मैंने उत्तर दिया। इस वट वृक्ष पर क्या पक्षी देखते हो? पक्षी देख रहे हो तो अरण्य में अशोक वृक्ष के पास जाकर देखो। इस वृक्ष पर अधिकतर कौए ही रहते हैं, सड़े पके फलों को खाने के लिए वही आते हैं। हाथ फैल लगे प्रतूत के डंडे से नीचे पड़े हुए फलों को फेंकता हुआ वह बोला, कौए? हाँ, भारद्वाज, शेन, कोकिल आदि पक्षी भूले भटके ही आ जाए यहाँ। एक आध कोकिल आ जाता है, वह भी कोकिला की धूर्तता से। धूर्तता कैसी? मैंने उत्सुकता से पूछा। अरे, कोकिला अपना अंडा मादा कौआ की अनुपस्थिति में चुपचाप उसके घोंसले में लाकर रख देती। अंडे का रंग और आकार बिल्कुल मादा कौआ के अंडे जैसा ही होता है, इसलिए मादा कौआ को यह संदेह ही नहीं होता कि अपने घर में किसी और का अंडा रखा है। फिर मादा कौआ कोकिला के अंडे को सेती है, उसके बाद सप्तस्वर में तान लेकर आसपास के वातावरण को मुग्ध कर देने वाली कोकिल मादा कौआ के नीड़ में बड़ा होने लगता है। उसने प्रतियुक्त को कंड के चारों ओर लपेट लिया। कोकिल और वह मादा कौआ के घोंसले में? मैं विचार करने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है? भगदत्त की बात असत्य न होगी, इसका क्या प्रमाण है? और थोड़ी देर के लिए यदि यह सत्य मान भी लिया जाए तो क्या हानि है? हो सकता है कि मादा कौआ के घर में कोकिल पलता हो, लेकिन वह कौआ बनकर थोड़े ही पलता है। वसंत ऋतु का अवसर आते ही उसकी सप्त स्वरों की तान पक्षियों से स्पष्ट कह रही देती है, मैं कोकिल हूँ, मैं कोकिल हूँ। 10. एक दिन नगर के सभी बालक इकट्ठे होकर नगर के बाहर पठार पर खेल रहे थे। किसी ने राजसभा का खेल खेलने की कल्पना निकाली थी। सचमुच बालक प्रतिसृष्टि निर्माण करने वाले ऋषि ही नहीं होते हैं क्या? उस दिन सबने राजसभा का दृश्य उपस्थित कर रखा था। जो हट्टे कट्टे थे उन्होंने सभा के कोषपाल, अश्वपाल, सेनापति, अमात्य, सचिव आदि सामान्य पदों पर अपना अधिकार कर रखा था। सभा की जानकारी उन्होंने कहाँ से प्राप्त कर ली थी यह बड़े आश्चर्य की बात थी। बीच में एक गड़ा हुआ पाषाण खड़ा था, उसे उन्होंने सिंहासन बना लिया था, स्वर्ण उनमें सेनापति बना हुआ था। मैं उसको बुलाने जा रहा था क्योंकि उसी समय पिताजी हस्तिनापुर से गाँव आए थे। आते ही उन्होंने मुझको एक बड़ी ही आनंददायक बात बताई। वापस जाते समय वे मुझको अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने वाले थे। उन्होंने मुझको बताया कि वहाँ द्रोण नामक अत्यंत युद्ध कुशल और विद्वान गुरुदेव हैं। पिताजी मुझको भी युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी देखरेख में रखना चाहते थे। उस समाचार को सुनते ही मुझको एकदम स्वर्ण की याद आ गई, लेकिन वह पर्णकुटी में नहीं था। मैंने निश्चय किया कि उसको समझा बुझाकर यह समाचार बताऊंगा, क्योंकि भय था कि उस समाचार को सुनकर कहीं वह भी हस्तिनापुर चलने के लिए माताजी और पिताजी से हट न कर बैठे। उसको समझाना हम सबके लिए टेढ़ी खीर थी। मैं जैसे ही पठार पर आया सब बालकों ने एकदम जोर से कोलाहल मचाया, वसु को बुलाओ, वसु को बुलाओ। शोर ने तो आनंद से हाथ उठाकर मुझको जोर से पुकारा, वसु भैया जल्दी आ। मैं झटपट उनके पास गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा सब मुझको घेर कर खड़े हो गए। सबके सब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसीलिए मैं तत्क्षण यह समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं। राजा, वसु, कुंडल, सेनापति आदि विचित्र शब्द गूंजते हुए कानों में टकराने लगे। दोनों हाथ उठाकर अंत में मैं ही जोर से चिल्लाया, पहले सब चुप तो हो जाओ। उसके बाद शीघ्र ही सब शांत हो गए। हम सब ने राजसभा तैयार की है, केवल योग्य राजा ही हमको नहीं मिल रहा था। तेरे कुंडलों के कारण हमने तुझी को राजा बनाने का निश्चय किया है, सबकी ओर से ब्रह्मदत्त बोला। सब ने एक साथ चिल्लाकर उसका समर्थन किया। अरे लेकिन मैं तो शोण को बुलाने के लिए आया हूँ, मैं बोला। शोण नहीं सेनापति, और सेनापति को बुलाने के लिए महाराज नहीं आया करते, हम जैसे सेवकों की आज्ञा दी जाती है, नटखट बाहू के तो धूर्तता से बोला। और आप हैं सेनापति, आपको महाराज को इस प्रकार नाम लेकर बुलाना उचित है क्या, कह रहे थे। अरे वसु इधरा। सेनापति ही अनुशासन भंग करने लगे तो फिर सेना क्या करेगी, आमात्य बने हुए ब्रह्मदत्त ने शोण को चेतावनी दी। मैं टाल मटोल कर ही रहा था कि उन्होंने मेरी बाँह पकड़कर मुझको एकदम उस काले पत्थर के सिंहासन पर ले जाकर बैठा दिया। अत्यंत आदर से झुकता हुआ ब्रह्मदत्त बोला, चंपा नगराधिपति वसुसेन महाराज की। सबने अत्यंत आनंद से उसके प्रत्युत्तर में कहा, जय हो। सब नीचे बैठ गए। अब मेरा छुटकारा होना असंभव था, इसलिए मैं भी राजा के शान से बोला, आमात्य सभा का कामकाज सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमारी बातें हो रही थी कि पास में चरते हुए जानवरों में से एक विशालकाय वृषभ जय जयकार की चिल्लाहट से भिदक गया। उसकी झब्बेदार पूंछ एकदम ऊंची खड़ी कर ली। आवाज जिस ओर से आ रही थी उस ओर कान लगाए पुपकारते हुए नथुने फुलाए और सिंहों को आगे किए हुए वह कान उठाकर सीधा उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर हम सब बैठे हुए थे। ब्रह्मदत्त ने उसका वह भयंकर रूप देखा और जान बचाकर जिधर अवसर मिला भागता हुआ वह हाथ ऊंचा कर चिल्लाया, सेनापति महाराज भागिए भागिए राज्य पर संकट। वर्षा का पानी धरती पर पड़ते ही जैसे क्षण भर में ही सब ओर फैल जाता है, वैसे ही सबके सब क्षण भर में 9-2-11 हो गए। शोर मेरे पास आकर भाग जाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं झटपट उसी पाषाण पर तनकर खड़ा हो गया। शोण को ऊपर चढ़ाकर उसको अपने पीछे खड़ा कर लिया। झंझावत की तरह वह विषभ हमारी ओर आने लगा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। सामने जो कोई वस्तु दिखाई दे उसी को ठोकर मारकर उसकी धज्जी उड़ाने के लिए उसके मस्तक की नस नस शायद व्याकुल हो रही थी। उसके सम्मुख से निरंतर लार टपक रही थी। यदा कदा वह किरणों में चमक उठती थी। पाषाण का सम्मुख आते ही वह क्षण भर रुका। अपने पैरों के खुरों से उसने खर खर मिट्टी खोदी और सींग गड़ाकर वह सुचित बाण की तरह एकदम उछला। मैंने क्षण भर आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव अपने रथ के असंख्य घोड़ों को केवल अपने दो हाथों से सरलता से संभाल रहे थे। कुछ समझ में आए इसका पहले ही मैंने शोण को पीछे ढकेल दिया और दूसरे ही क्षण मेरे हाथों की दृढ़ पकड़ ऋषभ के सिंहों के चारों ओर कस गई। शोण ने भैया कहकर जो चित्कार किया वह मुझको अस्पष्ट सा सुनाई दिया। उसके बाद क्या हुआ यह मुझको अच्छी तरह याद नहीं रहा, लेकिन मुझको उठाकर फेंकने के लिए उस जानवर ने जैसे जैसे जोरदार झटके मारे थे वैसे ही वैसे मेरे हाथ उसके सींगों के चारों ओर कसकर लिपटते गए थे। मुझको ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर रथचक्र की तरह तप्त लौहाल की तरह प्रखर हो गया हो। उसके बाद वसु कौन था कहाँ था इसका कुछ भी पता मुझको नहीं चला। जिस समय मेरी आँख खुली मैं उसी पठार पर था, लेकिन मेरा सिर माँ की गोद में था। समीप ही पिताजी खड़े थे, उन्होंने हाथ में उस वृषभ की नाथ पकड़ रखी थी। थोड़ी देर पहले आंखें लाल किए उछलने वाला वृषभ अब थक कर हाँफता हुआ खड़ा था। उसके मुख से शायद झाग निकल रहा था। मेरे सिर के पास शोण खड़ा था। वह टकटकी बांध कर मेरी ओर देखने लगा। मुझको आंखें खोलते देखकर उसके मुंह पर हंसी की एक लहर सी चमक गई। मैंने इधर उधर देखा। थोड़ी देर पहले खेल करने वाले ब्रह्मदत्त वीरबाहु और उसके साथी फिर इकट्ठे हो गए थे। मुझको एक राजसभा की याद आई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि क्षण भर पहले मेरे शरीर में जैसे कोई अद्भुत तप्त शक्ति उतर आई हो। क्षण भर में ही वह शक्ति न जाने कहाँ चली गई थी। मैं बहुत ही थका थका सा अनुभव कर रहा था, लेकिन मेरे शरीर में कहीं भी पीड़ा नहीं हो रही थी। मैं झटपट उठकर बैठ गया। कहीं न कहीं मुझको चोट आ गई होगी यह सोचकर मैंने अपने शरीर की ओर देखा। देह पर जरा सी खरोंच तक नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। पिताजी के पास जाकर उनके हाथ से नाथ अपने हाथ में ले ली। उस हाफते में वृषभ की पीठ पर कस पर थाप मारी। उसकी त्वचा भय से क्षण भर में सिहर उठी। अपने पूंछ अंदर की ओर करता हुआ वह तत्क्षण मुझसे दूर हट गया। पास ही उस वृषभ का गोपाल खड़ा था। मैं उस वृषभ को नाथ उसके हाथ में दे दी। वह गोपाल आंखें फाड़कर मेरी ओर देखता हुआ अपना वृषभ लेकर चला गया। राजसभा भी समाप्त हो गई।